And Radhika is on Maan, sulky mood. She turned his face from Krishna and stopped speaking. And Krishna, taking his flute and his peacock feather, kept on the lotus feet of Radhika and praying, Muncha Mai Maan. Maan Mani. Maan is, oh please, they gave me jewel of sulky mood. And like this he was begging, waking, beautiful song. Mahaprabhu yearned to taste all these songs from the mouth of Sarup Damodar. If he can, Muni Maharaj can sing like this, then how Sarup Damodar, more than Gandharva, in Sanskrit, in Bengali, in Hindi, in all languages, he used to sing and to pacify Chaitanya Mahaprabhu in this circuit. I wanted to give some time that Krishna is love and love is Krishna. How he melted in the form of Jagannath Baldev Subhadra out of high class of love. He was perhaps in Dwarka, and how he became melted. 5 minutes? Yeah, yeah. And how Narad begged something to be in Puri. 5 minutes. You can come here. You can come near Uma. I'll tell Uma to go there.
Uma can also do 5 minutes.
Go? What?
Oh, yes.
Door to door and tell them Krishna is coming very soon. He's on holiday, but on the way, some very important rich aristocratic gentlemen were offering him puja and articles. So he's just delayed just a bit, but he's very soon coming. Everyone decorate the village of Vrindavan and become happy. They'll all become so happy. So at that time, Baladev said, well, if Subhadra's going and my brother Krishna's going, then surely I'm going. I want to see my mother and father also in Vrindavan. So then Narada Muni sang, and Krishna came to consciousness. And he was immediately looking, where is Vrindavan? How can I get to Vrindavan? Fortunately, his associates had already arranged the chariot. Daruka was going to drive him very speedily to Vrindavan. So now there's three chariots, Subhadra, Baladev, and Jagannath, Dwarpadish Krishna, on their way to Vrindavan. On the way to the chariot, Krishna is falling side to side because he's in so much feeling of ecstatic separation of the gopis. So he's swaying this way and that way, just as you see Jagannath going to the cart, and you see the very big, strong dayatas holding him around the waist with the ropes and not allowing him to fall all the way. This is because when Krishna was on his way to Vrindavan, he was fainting. His associates had to keep him up. Now he's on the chariot, and finally he reaches Vrindavan. As soon as he reaches, one messenger tells him that Srimati Radhika is just about to leave her body, and if you don't arrive in the next second, she'll surely leave. In that place where Srimati Radhika is unconscious, Lalita and Vishaka are holding cotton swabs in front of her nose to see if there's any breathing. But there's hardly any breathing. And so Chandravali even goes there out of pity to show sympathy. And all the gopis are now thinking, finally it's come to pass that Srimati Radhika will not remain alive. They've given up all hope, and everyone is lamenting. Just then, Lord Krishna comes and he sees Radhika in that condition. And he weeps so bitterly that his heart begins melting to such an extent that his body melts, his arms melt, his legs melt, and he just had those two big eyes and the short arms. And then he begins rolling in that form of Jagannath right before Radhika and the gopis in Vrindavan. Baladev and Subhadra also arrive, and seeing him, they also assume that form and also take that very melted mood. Then Lalita and Vishaka whisper in the ear of Radhika that Krishna is here. Now you can wake up, your beloved is here. So Radharani immediately becomes alert and sees Krishna in that weeping and rolling condition. So she tells them that you tell this special mantra in the ear of Krishna as he's rolling. What is that special mantra? Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. So they whisper into his ear, and he comes back to his consciousness and assumes his normal form of Krishna. And then Srila Gurudev explains that the loving glance, the unlimitedly increased love, increasing moment by moment in the glance between Radha and Krishna cannot be described at all. It can only be realized in the heart of such rasic devotees as Srila Gurudev.
Thank you. नामशिष्टं मनुमपि सचेपुत्रमत्प्रस्वरूपं रूपं तस्याव्रजगुरुपरमात्मनं गोष्ठवाचि राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासां प्राप्तोऽद्यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण च चैतन्यनाम गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय यं प्रव्रजन्तमन्तेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोविनेदो तं सर्वभूतैः मुनिमान् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कोटि कोटि बार संधार दंडवत करने की ज्ञापन करता तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रवेशम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि शास्त्र दंडवत करने की ज्ञापन करता अब हम लोग गोदावरी तट पर महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु और राय रामानंद के निकट में आया। हमने कहा था भगवत सेवा के लिए संबंध ज्ञान की जरूरी है। बिना संबंध ज्ञान के भजन नहीं हो सकता। इसलिए गुरु हरिनाम देने के बाद में सबसे पहले दीक्षा प्रदान करता है और दीक्षा के माध्यम से कृष्ण के प्रति संबंध ज्ञान देता है, तब वो भजन आरंभ करता है और भजन प्रभाव से धीरे धीरे अनर्थ के लिए पूछती है। ये जो संबंध ज्ञान है, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, इसमें बाधा एक है, एक नहीं दो अंतराय है। इस भौतिक देह में, पार्थिव देह में यदि आसक्ति हो, आवेश हो, जो मैं हूं, जो शरीर है, और उसके लिए किसी चीज की वासना हो, इच्छा, ये दो उसमें बाधाएं हैं जो संबंध ज्ञान को विकसित नहीं होने दे। देहावेश से कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान नहीं रह करके लौकिक लोगों के साथ में भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार समाज के साथ में संबंध, इसी यही प्रबल है। इसलिए इसका दूर होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संबंध ज्ञान में सेव्य और सेवक भाव और सेवा की वासना उससे उत्पन्न होती है संबंध ज्ञान। बिना संबंध ज्ञान के, बिना दीक्षा के संबंध ज्ञान के कृष्ण की सेवा वासना बढ़ेगी ये संभव पर नहीं है। और एक बात हमने बतलाया है पहले, सेवा वासना है उसमें एक और भी चीज है, अपराधी त्याग न हो तो एक ऐश्वर्य ज्ञान यदि हो तो बाधक। ऐश्वर्य ज्ञान या अस्वैर ज्ञान अत्यंत ऊपर तक चला जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान रहने से सेवक और सेव्य का भाव गाढ़ नहीं होता है, पूरा गाढ़ नहीं होगा। जितना ही ममता आएगी और गाढ़ा संबंध होगा ऐश्वर्य ज्ञान दूर रहेगा, नहीं तो ऐश्वर्य ज्ञान। हनुमान में भी ऐश्वर्य ज्ञान हो जाता, पांडव में भी ऐश्वर्य ज्ञान हो जाता, यशोदा मैया में, सखाओं में, गोपियों में यह सर्गगंध लुप्त रहता है। रहता तो है सेवक की भांति, जब जरूरत होती है तो सेवा करने के लिए आता है, जैसे कृष्ण के लिए, प्रजन्म नंदन के। और एक एक भी तुम लोगों को ध्यान होगा कि नहीं, एक और चीज विशेष बतलाया था, सेवा की वैचित्र्य का भी तारतम्य है। ये सेवा दो प्रकार की बतलाया था, एक स्वतंत्रमयी सेवा और एक परतंत्रमयी सेवा। स्वतंत्रमयी सेवा में राधा जी के कायव्यूह गोपियों का ही पूर्ण रूप से अधिकार है, ललिता विशाखा इत्यादि, जीव का इसमें अधिकार नहीं है, उसका नहीं है। गोपियों की स्वतंत्र, क्योंकि राधा जी की काय जीव है, इसलिए उनकी सेवा के लिए कोई एक अभिमान होता है। ललिता विशाखा इत्यादि हैं, ये राधा जी की काय जीव है, इसलिए उनका एक अभिमान है उस सेवा के लिए, हम राधा कृष्ण की सेविका हैं, जीव का उसमें अधिकार नहीं है। किंतु यही अभिमान कोई ऐसी एक सेवा है जिसकी गंडी को वो पार नहीं कर सकते। फिर से समझो, ललिता जी के स्वरूप में ही, विशालता जी के स्वरूप में ही कुछ ऐसी अभिमान है, या राधा जी को श्रीमती राधिका मान की शिक्षा देती है, धुरते ब्रजंद तने तम सुष्ट बम मां दक्षिणा भव कल के लीलाघवाय राधे सुन विराम हितामिति शिक्षयन्ति देवी गुणई सु ललिता ललिता। किंतु रूप मंजरी क्या करेंगे, वो रोएंगी, जैसे तैसे वो सज्ज नहीं कर सकती है इनका विरह। इसलिए ललिता विशाखा तो अपनी गंडी की सेवा को ठीक रूप में पूरा करेंगी, और परतंत्रमयी ये भी काय विवाह राधिका जी की है, किंतु परतंत्रमयी रूप मंजरी इत्यादि की सेवा कैसी है, राधिका जी की बस कैसे प्रसन्न, उनका मान भी हट जाए, मान भी नहीं रखने, वो तो ललिता के डर से रोकी रहती है। इसलिए स्वतंत्रमयी सेवा की एक परिपाटी है, एक गंडी है, एक स्थिति है, उसको पार करके नहीं है। और परतंत्रमयी रूपमंजरी क्या, वो उस गंडी में नहीं आएंगी, वो स्वतंत्रमयी होते हुए भी परतंत्रमयी होने के कारण राधा जी जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे, वैसे ही करेंगे सारी व्यवस्थाओं को। यदि ललिता विशाखा को जरूरत होगी राधा कृष्ण से एकांत में मिलने की, और वहां पर राधा कृष्ण वो निशांत लीला में कुछ अस्त वस्त्र पड़े हुए हैं, उसमें ललिता जी आकर के पूछेंगी, वहां उस समय सबसे पहले मंजरी रति मंजरी लौंग इत्यादि मंजरी ही प्रवेश करेंगी, उनका रूप ठीक करेगी, वसन भूषण सब ठीक करेंगी, तब इसके बाद में ललिता जी आएंगे। इतना ही नहीं कि परतंत्र सेवा में इतना रूप मंजरी को भी जीव मत समझना, किंतु इनकी सेवा में बद्ध जीवों का भी और जीव मात्र का भी अधिकार है। इसलिए महाप्रभु अनर्थचरण की रात में इस श्लोक पर विचार करके उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रीयम यह मंजरी भाव दिया जगत, इसका प्रचार किया। ये बात और समझो, जब तक देहावेश, देह में आवेश है स्थूल शरीर में, जीव और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान नहीं गया है, तब तक महाप्रभु जी ने कहा कि यह बाह्य साध्य और साधन के विषय में प्रश्न किया है। तो जब तक उन्होंने देहावेश की बात उनकी बातों में देखा और जीव और ब्रह्म ज्ञान का भी उसमें देखा भाव है, तो उसको कहा बाह्य। कैसे? स्वधर्म हित है विष्णु भक्ति, स्वधर्म स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। महाप्रभु जी ने कहा यह बाह्य, क्यों कहा? इसमें एक विचार करना है। विष्णु भक्ति ये तो शुद्ध भक्ति है, इसमें कोई हर्ज नहीं। विष्णु भक्ति माने कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को ही विष्णु कहा गया है। वो क्या श्लोक? व्याप्नोति विष्णु, सब वक्त व्याप्त होते भी कृष्ण रूप में व्यक्त है। इसलिए विष्णु भक्ति शुद्ध है, इसमें अन्नाभिलाष नहीं। शुद्ध विष्णु भक्ति में यदि शुद्ध भक्ति होगी तो इसमें अन्नाभिलाष नहीं है, ज्ञान कर्म के द्वारा आच्छादित नहीं है, वो शुद्ध है, उत्तमा भक्ति होगी। किंतु यहां जो कह रहे हैं विष्णु भक्ति है किंतु स्वधर्म आचरण के द्वारा, शुद्ध भक्ति के लिए जरूरत है अन्याभिलाषिता श्लोक को पालन करना। भक्ति के साधन से ही शुद्ध भक्ति का साध्य है। पहले वो साधन भक्ति है, जब अपनी प्राकृतिक इंद्रियों से जब उसका साधन करते हैं या प्राकृत मन से जब साधन करते हैं तो उसको कहते हैं साधन। वो क्या है? श्लोक कहते हैं कृति साध्य, कृति साध्या भवेत साध्य भाव ससाधन अभिधा नित्य सिद्धस्य प्राकटं विदिशाता। कृति इंद्रियों के द्वारा जो कृत होती है, भक्ति तो अप्राकृत है, इंद्रियों से अतीत है। भगवान का जो नाम लेते हैं हम तो वो प्राकृत से अतीत है, किंतु जब हम सद्भावयुक्त जिह्वा से जब उसका उच्चारण करते हैं, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, इंद्रियों के द्वारा अर्चन पूजन करते हैं, तब उसको साधन भक्ति, किंतु भक्ति होना चाहिए। जब तक साधन भक्ति नहीं होगी शुद्ध, तब तक शुद्ध प्रेम या शुद्ध भक्ति नहीं होगी। किंतु इसमें बतलाया गया है कि विष्णु भक्ति तो होती है किंतु स्वधर्म आचरण के द्वारा होती है, भक्ति नहीं। था स्वधर्म आचरण वर्णाश्रम धर्म पालन, यदि वर्णाश्रम धर्म भक्ति का साधन नहीं है तो क्यों कहा? इसको समझने के लिए थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। भक्ति भी आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, और स्वरूप सिद्धा भक्ति। जहां श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि है गुरु के अनुगत्य में, ये श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन बंधन दास साक्षात मिलेगा। ये क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। यहां स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है, आरोप किया जा रहा है, वो आरोप सिद्धा भक्ति है नहीं किंतु आरोप कर रहे हैं, तब तो आरोप सिद्धा भक्ति। और जब किसी के संग से दान पुण्य इत्यादि कार्य भक्ति नहीं है, किंतु भक्त लोग यदि इसको करते हैं विष्णु की सेवा के लिए, तो इसे संग सिद्धा कहते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि। इसको हम पीछे से समझाते हैं, ये सुल्तान से
yesterday you mentioned the verse Mukta Api Lilaya. This I discovered. This is Shankaracharya has written this in his commentary on the Nrisinga Tapani Upanishad.
Not Siddhartha Goswami has quoted.
Chaitanya Mahaprabhu quoted it to Prakashananda Saraswati, Madhya Lila chapter 25. It may be quoted also other places, but.
But it has been taken from Siddhar.
Shankaracharya.
No, Siddhar. Siddhar is more prominent than Shankaracharya.
Siddhar Swami quoting Shankaracharya in his Tika on Srimad Bhagavatam 10.87.21. He is quoting Shankaracharya's
very good.
Tapani
Upanishad.
in the practice of bhajan, two obstacles are prominent. One is avesh, absorption in the material body. I am this physical body, and being absorbed in that experience. And the second one is vasana, material desires, ichcha. Desires for anything other than the service of Shri Krishna. So, no guru may give diksha initiation to the disciple. He is sampradaya in the knowledge of his relation with Shri Krishna will not flourish when these two obstacles are present. Due to attachment to the body and to all the substances related to the body, such as wife, home, children, wealth, all of these things, then the transcendental relationship, sampradaya, cannot flourish and manifest. In Sambhadagya, there are two things. Sanyaka Sevaka Sambhadha, the relationship between the object of one's service and the servant himself. And Seva Vasana, the desire to render favorable services. So, if there is Aishwarya Jnana, knowledge of the opulence of the Supreme Prosperity of Godhead, this Aishwarya Jnana causes both of these things, the relationship between the object of service and the servant, and also his desire to render service, both of these things become diluted. They cannot become very thick and concentrated in the presence of Aishwarya Jnana, or the conception of the power and majesty of Shri Krishna. So we see that the Ritvasis, the Shalamaya, Gopis and Vrindavan, the Kama boys, their Aishwarya Jnana is completely covered over, and therefore they can serve spontaneously and freely without any impediment. Now, this type of seva, Srila Gurudev is going through all the stages. This type of seva has two types. There is an anatomy that means there are gradations. Gradual increase in the superiority of different types of seva. This seva is divided into two parts. So tantra mayi seva, swa tantra mayi. So tantra means independence. So that service, which is possessed of the quality of independence, is called swa tantra mayi seva. The second type is called Paratantra Mayi Seva. Paratantra Mayi means not independent, but following in the wake of those who have the Swatantra Mayi Seva. So that's called Paratantra Mayi Seva. Not independent service, but the service which follows in the wake of those who are ready to service independently. So, the first type, Swatantra Mayi Seva, is present in gopis such as the Lita Vishaka and Chitrajamadatta, those who are the Kaya Yoga group, or the direct body manifestations, those who are the Vigraha, the Varika's own roots, it is present in them. So, Varika's Kaya Yoga group, such gopis, they enter Svatantra Mayi Seva, the Jiva, souls such as ourselves, who have no adhikar, no qualification or eligibility to render this type of service. The Lita Vishaka and others who render this service, they have a certain abhiman, that means self-conception, or conception of their own identity. It's called abhiman. I am the sevika of Radha and Krishna. This abhiman in them is extremely deep, condensed. The jiva does not have even a smell of abhiman like this. In the surup of the Lita, there is such powerful abhiman that she can control Malika, she can chastise Shrimati Malika, she can give instructions and tell her what you should do, mana, as evidenced by Srila Prabhupada's 45. In his very first time, the Rajan Rajanayetam Shushimam
Tell me something more. Tell me something superior.
present in the conception, presented by Ramana Ray. Or Jiva Brahma Aikya Jnana, the knowledge that the Jiva and Brahma, they are the same, they are equal in all respects. If that is present, then actually devotional service will not develop, it will not mature. So now, Ramananda Rai had said, given an answer, Swadharma Acharane Vishnu Bhakti Vai. The goal of life is Vishnu Bhakti. So Mahaprabhu, he replied to this, said, Evavaya, this is external. So Vishnu Bhakti is not external, Vishnu Bhakti is transcendental. Why did Chaitanya Mahaprabhu reject it and say that this is external? This is the point that has to be considered very carefully. Vishnu Bhakti is Shuddha Bhakti, pure. Vishnu is another name for Krishna. As Srila Shukadeva Goswami Pak said when he was explaining Rasalila to Maharaj Prashit, Vikri Nitam Vajabhadurabhi Nitam Chami Vishnu. Vishnu himself has performed Rasalila with the gopis. Vishnu also means Krishna. The apology to Vishnu. The word Vishnu means that personality was all pervading. So at the time of Rasalila, Krishna was everywhere, dancing with all gopis. So Vishnu is also a name for Shri Krishna. So Ramananda Rai said, Vishnu Bhakti is the sadhya, and Mahaprabhu has rejected it as being something external. And the reason is because Ramananda Rai said, Rai Kohi Swadharma Acharya Vishnu Bhakti Hai. Vishnu Bhakti is the performance of prescribed duties. The performance of one's responsibilities in Varnashram Dharma. And this is why Mahaprabhu rejected it. Because Vishnu Bhakti, or pure Bhakti, is attained by the performance of Sadhana Bhakti. That has been defined by Srila Rupa Goswami Pad. Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhavasa Sadhana Vidha Nitya Siddhasya Bhavasya Prakatam Kriti Sadhya. Sadhana Bhakti means that which we do to attain Bhava Bhakti, to manifest the eternal, the pure mood of relationship, Rati, with Krishna, within our hearts. This is called sadhana. So sadhana bhakti is kriti, performed by the senses. When the senses of the physical body are engaged in shravanam, kirtanam, archan, puja, all of these things, or the mind is engaged in smaran, mature mind, engaged in smaran, then this is called sadhana bhakti. And by performing this gradually under the guidance of Sadhguru and Shuddha Vaishnava, then the influence of pure bhakti, Shuddha Sadhguru, manifests in the heart of the living entity. So, Vishnu bhakti, which is Shuddha bhakti, Uttama bhakti, is attained by this sadhana bhakti. But here Ramananda Rai said, oh, by Swadharma Acharana, performance of Swadharma Varnashrama Dharma, one can attain this Vishnu bhakti. And therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu has rejected it. So here, there's a need to analyze different conceptions of bhakti. The first one is called Swarup Siddha Bhakti. The second one, Sangha Siddha Bhakti. And the third one, Arop Siddha Bhakti. So, first we should know Swarup Siddha Bhakti. Swarup Siddha means that devotional service, which is in and of itself composed entirely by constitution of the angas of bhakti, such as Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasekam, Asravanam, Dasasakam, Atmanivedanam. All of this is called Swarup Siddha Bhakti, or the devotional service, which is in and of itself composed constitutionally of the limbs of bhakti. But if someone is not doing this, but doing something else, such as performance of prescribed duties in Varnashram Dharma, and then they think that what they are doing, this is actually bhakti, then they're actually superimposing the conception of pure bhakti upon something which is not pure bhakti. So the word arop means to superimpose. So arop siddha bhakti means when we superimpose the conception of devotion upon an activity which is constitutionally not devotion. Because Varnashram Dharma, Yogarana and Ashram are related to the physical body, not to the Atma. So this is a superimposition. So then, if one will engage in activities which are somewhat related to devotional service, such as giving donations to devotees, giving charity, all of these things, actually, this is not devotional service, but it has some relationship with devotional service. This is called Sangha Siddha Bhakti, or the cultivation of qualities, of sentiments, of knowledge, understanding, which is automatically included in Pure Bhakti, related to Pure Bhakti. That is called Sangha Siddha Bhakti. So, until Ramananda Rai will suggest Swarup Siddha Bhakti, while he's giving suggestions which include only Arup Siddhartha and Sangha Siddha Bhakti, until that point, Sri Chaitanya Mahaprabhu is bound to say, Ehoaya, Adhikyaoaya, this is external, please tell me something superior.
Okay, Yannoa, one question.
One question.
Please mention.
Who is asking?
Me.
Oh, you should go. She will sing a bunch.
One question.
More louder?
To offer donations or to attribute activities in Varnashrama Dharma is not devotion. I understand it is not pure devotion. It is. Yeah, bhakti is devotion.
What is devotion? What he is telling?
He's saying that to execute. Oh,
Buddha Varnashrama is saying that I said that only giving dan, charity, and also performing activities of Varnashrama Dharma, this is not bhakti. But he's saying that,
नंद बाबा जी का दान, नंद बाबा का दान वो कृष्ण भक्ति है. और जिसको देह में आवेश है उसका दान अभी वो नहीं है. वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत में कर्म प्रधान है, इसलिए संघ सिद्धा कहा गया है कि यदि वह दान कभी किसी कारण से वैष्णवों के और या कृष्ण संबंधित लोगों को हो, उनके प्रति हो, तब तो वो भक्ति कुछ हो जाएगी, किंतु फिर भी रहेगी आरोप सिद्धा वो.
Nanda Maharaj would give charity to Brahmanas. This is definitely Swarup Siddha Bhakti. Why? He gives charity to Brahmanas so that he'll bless his son, Krishna. So Krishna will be happy. So this is Swarup Siddha Bhakti. But if charity is given with Deha Amish, absorption in the physical body, then it will not be bhakti. Now there's another consideration. If someone will give donation to a pure devotee, then in this, partially unconscious group, partially, there's some aspect of devotion, but it depends on that person, what is their mood. If they have Deha Mesh, also this will reduce the benefit. I remember Shilaburi, someone came to you once and gave you donation, this is donation. You said, you cannot give a donation to your guru. How can you give charity to guru? You have nothing, Guru has everything. How will you give a donation to Guru?
How to your father?
How can you give a donation to your
father? Wealth and you are giving to charity to your father.
So your father has given you everything. Then you take some of that money, your pocket money your father gives, and I'm giving you a donation. So this is quite wrong. So donation to Guru, it is not called donation, it's called pranami. Published through pain, ahankara, and liberty.
like Bali Maharaj. Like Bali Maharaj. You should do kirtan. এটা ফল বাজিয়ে দোকে ইট ওয়াজ সরব হি গেট ইট himself atmashabha
the first the only god gave donation god gave himself
the krishna bam dev trickly to
as you want to do anything that
is
Thank you.
अभी वर्णाश्रम धर्म के संबंध में हम जो बतला रहे थे, आरोप सिद्धा किस लिए कहा गया है? शुद्ध भक्ति नहीं है और दूसरी बात आरोप क्या है उसमें, पिता ही परमेश्वर है, पिता की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है, पत्नी पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है, बिना पति की सेवा के या पिता की सेवा किए हुए कोई परमार्थ नहीं लाभ कर सकता, ये वर्णाश्रम धर्म है। ब्राह्मण लोग ही पूजा पाठ और जो भागवत पाठ करते हैं अद्वैतवादी लोग, वो सब क्या है, देखने पर भी भक्ति है किंतु भक्ति नहीं है, सब आरोप सिद्धा है। पिता न शस्य गुरु न शस्य पिता न शस्य, ये शुद्ध भक्ति है। गुरु को भी छोड़ देना चाहिए यदि शुद्ध भक्ति का पथ अवलंबन नहीं करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, उसको मानते नहीं है। गुरु को भी छोड़ दो, पिता को भी छोड़ दो, माता को भी छोड़ दो, स्त्री को भी छोड़ दो, पति को भी छोड़ दो, जो न मोह चाहिए जह समुपेत मृत्यु से हमारी रक्षा न कर सके, और कृष्ण प्रेम पति सेवा परमेश्वर की सेवा है, ऐसा हमारे वर्णाश्रम धर्म में मान्यता है। और इस तरह से स्त्रियां पति की सेवा करती हैं। राम ने सीता जी को छोड़ दिया तो भी आदर्श किया, जब सीता जी ने नहीं छोड़ा तो उनके पति तो परमेश्वर है, तुम्हारे पति परमेश्वर है क्या, ये भी विचार करो। वो तो रामचंद्र जी ने सब चीज दिखलाया, वो तो ठीक है। इसलिए पति की सेवा परमेश्वर की नहीं है। हाँ, पति यदि भक्त है पांडवों जैसा, द्रौपदी यदि पत्नी है तो वो कृष्ण भक्ति के लिए उनसे संबंध है, इसलिए उनकी सेवा तो भक्ति के अंतर्गत में ग्रहण कर ली जाए, अन्यथा नहीं। वर्णाश्रम धर्म में कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, तपस्या मिश्रा और भी बहुत से मिश्रित चीजें हैं। ये बात को समझो, कर्म मिश्रा भक्ति में भक्ति के द्वारा ही अपने कर्मों का फल मिलता है, ज्ञान मिश्रा में भक्ति के द्वारा ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान का फल मिलता है, योग और तपस्या का फल मिलता है, ये भक्ति देती है, किंतु दे करके अंतर ध्यान हो जाती है, अब भक्ति नहीं रहती, वो दे दिया फल, क्योंकि बिना भक्ति के सहायता के कर्म ज्ञान योग तपस्या व्रत इत्यादि कोई फल देने में असमर्थ है। इसलिए भक्ति आपने चाहा किंतु कृष्ण की सेवा तो चाहा नहीं, इसलिए वो दे करके अंतर ध्यान में। इसलिए वर्णाश्रम धर्म में ये होने से ही हो बाध्य, जहां पर शुद्ध संबंध ज्ञान नहीं है और शुद्ध आत्मा का धर्म नहीं है, देह में आवेश है, देह के लिए ही देह संबंधित लोगों के लिए ही हम कर्म करते हैं, हमारे परिवार के लोग सुखी रहे हम भजन करते हैं, शंकर के हैं जाते हैं या राम की या कृष्ण की भक्ति, तो वो क्या हो गया, वो शुद्ध भक्ति नहीं हुई, आरोप किया गया। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा यो बाज्य, जहां पर नित्य सेवक और सेवा भाव का और सेवा की वासना का कुछ इंगित है तो यो है, कहां यो है, सतांग प्रसंगम वृज्य संविद भवंतरित करण रसायन तथा तद्दोषनाथ आशु अपवर्त वर्तमान श्रद्धा रति भक्ति अनुकर। ऐसी यदि भावना होगी तो महाप्रभु का यही हो है, ज्ञाने प्रयासम उत्पाश्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता तनु वांग मनोभि प्रायशो अजित जीतो अपित्र हेतु। यह ज्ञान के प्रयास को भी, ऐश्वर्य ज्ञान के प्रयास को भी छोड़कर के, यहां तक कि तत्व ज्ञान को भी छोड़कर प्रयास, ईशत अपि तनिक भी नहीं छोड़कर के, क्या है उत्पाशन नमंत एव जीवंत सन्मुखरितां भवदीय वर्त, भगवान की कथा को प्रणाम करो श्रद्धा पूर्वक, जो कह रहा है उसको प्रणाम करो, जो आयोजन किया उसको करो, जो वक्ता है उसको प्रणाम करो, इस प्रकार से यदि करे तो भक्ति। इसलिए इन विचारों को ग्रहण करके आप लोग आगे बढ़िए। कल पहले अलालनाथ और तब बेंट में जाएंगे। बेंट राय रामानंद जी का पैतृक भूमि है, वहीं पर रहते थे। उनकी तलवार और उनके लिखे हुए ग्रंथ और अभी भी वहां पर सुरक्षित रखे गए हैं। और वहीं पर सिक्खी मायती की बहन माधवी देवी जी का भी स्थान है, जो महाप्रभु की आधे जनों में एक कहलाती है। और उसका दर्शन करने के बाद में हम लोग जाएंगे साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल कौन है? जो साक्षी देने के लिए वृंदावन के मंदिर से और आए थे। कहां पर आए थे? कौन सा जगह? विद्यानगर में। और फिर वहां से महाराज पुरुषोत्तम जाना, उस देश को विजय करके ये सब चीजों को ले आए। तो जगन्नाथ मंदिर में रख दिया गया, तो वो भोग लगते ही सभी खा जाते। तो राजा को सपनुआ जैसे ये बालक आकर के सब खा जाता है, हम रह जाते हैं भूखे, इसको अलग से कोई व्यवस्था नहीं। तो साक्षी गोपाल एक जगह है, उसी जगह में इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। ऐसे मालूम होते हैं ये किम बदंती है, किम बदंती नहीं, ठीक ये बात है। विग्रह बोलते हैं, भक्तों के सेवा वासना को देखते हैं। इसलिए आज यही हम समाप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद में आरती हो, एक कीर्तन करो।
ट्रांसलेशन हो गए, ट्रांसलेशन